हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज भागवतम के प्रवचन में। मैं यहाँ पे क्लास देने बैठ तो गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हम गुरु की प्रार्थना करते हैं ना, योग्यता विचारे कुछ ना ही पाए, तो मैं अपने आप को बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो बोलते हैं तुम्हारा करुणा सार, सो जब मुझे ये सेवा हिजुलनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज ने दी, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज सारे वरिष्ठ वैष्णव इतने धामवासी, मैं एक कंप्लीटली भौतिकवादी कैसे यहाँ बैठ के क्लास दूंगा। महाराज कहते नहीं, तुम सेवा लो और दो, गुरु को याद करो, श्रील प्रभुपाद को याद करो, और जो तुम्हें पता है वो बताए। तो उसकी उनकी करुणा और आप सब वैष्णवों की करुणा से मैं कुछ कोशिश करूंगा। अगर कुछ गलती हो तो ये सिर्फ मेरी कमी है, और अगर कुछ ठीक लगे तो ये सिर्फ आचार्यों से आ रहा है। इसको मान के आप सबको प्रणाम करूंगा मैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखामृतमुश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिरादे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक आज लेंगे। ये अगर हम इसको देखें तो ये चर्चा रोज आप कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बताते थे कि हमें ये एक जैसे बच्चों को जब वो छोटे होते हैं ना टीकाकरण करते हैं ना, टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो ये भागवतम सुनना रोज ऐसी क्लासेस में आना एक तरह से वो टीकाकरण की तरह हमारे जीवन में काम करता है। टीकाकरण के दो काम है, एक तो ये कि इमीडिएट अगर कोई बीमारी है उससे बचाता है, और लंबे समय के लिए अगर एक इम्यूनिटी शरीर में एक एंटीबॉडीज बनाता है, तो ये भागवतम इस तरह से ही हम पे काम करती है। अगर आसपास हमें विचलित करने वाली चीजें हैं उनसे बचाता है हमें। सुबह सुबह जैसे कहते हैं ना जब कोई लड़ने जाता है तो एक कवच पहन के निकलता है, तो ये कवच की तरह काम करता है। और जब हम लंबे समय पे जाएंगे तो धीरे धीरे जो कवच तो चलिए बाहर पहन ले, लेकिन अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम बैठी है हमारे अंदर ऑलरेडी, राइट। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं वो तीन पहले ही अंदर घुस के बैठे, काम क्रोध लोभ, तो वो तो हमारे अंदर बैठे हैं। तो लॉन्ग टर्म में लंबे समय पे यही भागवतम एक ऐसी टीकाकरण का काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो अंदर बैठे शत्रुओं का भी नाश करता। तो पहले तो आप सबका प्रणाम करता हूँ, और बहुत आप सौभागी हैं वृंदावन में बैठ के हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के बारे में सुन रहे हैं। सो आज का जो श्लोक है ऊपर करेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सातवें स्कंद का चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है। न्यस्त क्रीडन को बालो, न्यस्त क्रीडन को बालो, जड़वत तन्मनस्तस्या, जड़वत तन्मनस, इज इट गॉन, ओके, शब्दात शिल्पपाद के द्वारा, शिल्पपाद की अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने अपना उन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतएव वह यह नहीं समझ सके कि संसार किस तरह इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। तात्पर्य शिलप्रपात जी के द्वारा, शिलप्रपात की, प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति, प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहता है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, स्वार्थ जगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्मृति। पूर्णतया कृष्ण भावनावित व्यक्ति इस जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, यह महाभागवत के लक्षण है। वह सर्वत्र कृष्ण की ही वह सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है, जैसे कि ब्रह्म संहिता द्वारा पुष्टि की गई है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संतस सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदा देखे जाते हैं जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। वह भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान को निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो वो किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे, अतः वे भौतिक जगत के विषय में ना तो सोच सकते थे ना कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित ही रह सकते थे। यह महाभागवत का लक्षण है। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों ना हो, महाभागवत उसे कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। एक अन्य मोटा उदाहरण यह है कि पीलिया ग्रस्त आंखों से सब कुछ पीला दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्णा की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभागवत अर्थात प्रमण भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनमें नैसर्गिक अनुगति थी। इस श्लोक में कृष्ण के पति ऐसी नैसर्गिक गति के लक्षण वर्णित हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बच्चे थे किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि नहीं थी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वृत्ति अन्यत्र च, पूर्ण कृष्ण भावित के का लक्षण है कि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों में रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल को छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्णा मृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार की भौतिकवादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है, उस तरह प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत सदैव कृष्ण के विचारों में संलग्न रहता है। नष्ट क्वीन न को बालो जड़वत तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीशम। सो इस श्लोक में एक महाभागवत का वर्णन स्वयं नारद मुनि जी कर रहे हैं और कथा ये शुरू हुई है 31वें श्लोक के आसपास, जहाँ पे पहले वो इस चैप्टर का अगर हम टाइटल देखें तो उसमें लिखा है कि जो हमारे हिरण्यकश्यप था उसका किस तरह से प्रकोप था कि उसे ब्रह्मा जी को खुश करके उसने कैसे सबको परेशान करना शुरू कर दिया, और 31वें श्लोक से प्रहलाद महाराज की गुणगान शुरू हुआ है और यहाँ पे भी उनका एक गुणगान बता रहे हैं। गुणगान को एक्चुअली एक्शन में दिखा रहे हैं कि जो वो क्यों थे महाभागवत, क्योंकि उनके एक्शन जो थे, उनके कार्यकलाप जो थे वो इस तरह के थे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित थे और पूरी तरह से भगवान को हमेशा याद रखते थे। नहीं तो क्या कर पर नष्ट क्रीडन को बालो, वो कोई भी बच्चों की जैसे एक व्यस्त बच्चे रहते हैं ना, हर समय खेलते कूदते रहते हैं, कोई भी चीज मिले उसमें अपने आप को बिजी कर लेते हैं, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया था, पूरी तरह से छोड़ दिया था। जब कोई बड़ा किसी बच्चे को देखता है और देखता है पूरा दिन ये कुछ ना कुछ इधर उधर भागता रहता है, कोई छोटा सा खिलौना लेके, कोई किताब लेके, उस पर कुछ ना कुछ करता रहता है और अपना टाइम खराब करता रहता है, तो बड़े जनली देखते हैं और हंसते हैं कि देखो बच्चा है, बचपन है, क्या करें भाई। लेकिन अगर हम ये देखें कि आजकल जो बड़े व्यस्त लोग हैं वो भी अपने आप को दुनिया में व्यस्त करके बैठे हैं, है कि नहीं, बस उनके खिलौने जो हैं वो थोड़े सोफेस्टिकेटेड या अत्याधुनिक कहते हैं ना, उनके जो खिलौने हैं वो अलग तरह के हैं। उनके खिलौने क्या हैं जी, मुझे बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, किट्टी पार्टियों में जाती हैं माता जी, वो सोचते हैं कि हम दोस्तों के साथ घूमने निकलें, तो उनके खिलौने अलग हैं। जिस तरह से बच्चे अपने अपने खिलौनों में बिजी रहते हैं, इस तरह से बड़े क्या होता है, वो अपने खिलौनों में और खेल कूद में बिजी है। तो एक जब महाभागवत उसे देखता है वो बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे एक बड़ा किसी बच्चे को देखता है और कहता है ये कैसे टाइम अपना खराब कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज भी आखिर में कहा कि ना वेद जगदी ईदृशम, कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे लोग अपना समय पूरी तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे होते ना बच्चे होते हैं कभी कभी घर घर खेलते हैं, आपने सुना घर घर खेलते हैं, घर घर में क्या होता है, एक बच्चा छोटा था माँ बन जाता है, कभी बाप बन जाता है और वो कहता है तुम बाहर जाओ, बाहर से आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के दूंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के दूंगी, तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें पानी दूंगा, मैं काम करने जाऊंगा। तो घर घर खेलते हैं, थोड़ी देर बाद जब भूख लगने लगती है और जब टाइम ओवर होने लगता है तो माँ आती है और कहती है अरे चलो बंद करो, अब असली में काम शुरू करो। तो एक महाभागवत कुछ इस तरह से ही सब लोगों को देखता है कि सब अपनी कार्यकलापों में इतना व्यर्थ हैं, अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यर्थ हैं कि वो ये भूल गए कि ये एक एक घर घर की तरह खेल है, बट मेरे जीवन का लक्ष्य ये घर घर नहीं था, ये जिम्मेदारियां सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो जब एक आत्म साक्षात्कारी भक्त किसी लोगों को देखता है तो वो क्या कहता है, वो बिल्कुल उस तरह से उसके मन में दर्द होता है, वो बिल्कुल उनकी एक्टिविटी को देख के परेशान होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना, सानिशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति समयी यस्यम जागृति भूतानी सानिशा पश्यतो मुनि। जो एक आत्म साक्षात्कारी के लिए रात है वो भौतिकवादियों के लिए दिन है, और जो आत्म साक्षात्कारियों के लिए दिन है वो उसके लिए रात है। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कि हम 4 बजे उठते हैं, वो बात तो ठीक है उनके लिए 4 बजे दिन खत्म होता है, पार्टियों से आते हैं और हम 4 बजे उठ के भगवान की आरती के लिए तैयार होते हैं, वो तो बिल्कुल एक ऑब्वियस मतलब एक बिल्कुल प्रमाणिक बात है। लेकिन हमारी जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल उनसे अलग हैं, है ना, यही भगवान भगवद्गीता में बताते हैं। तो भगवद्गीता में कहते हैं हमें सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए हैं भगवान ने, उन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं, तो ये प्रहलाद महाराज जैसे और सारे महाभागवतों की कथाएं दी हैं कि चलो थ्योरी में तो बता दिया, भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लेकिन शरण लेनी कैसी है, अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा करके नहीं आते तो हम क्या बोलते, कुछ समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए भगवान फिर से कहते हैं आपने आचर्य धर्म आपनु सिखाए, कि जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा और फिर से खुद नहीं सिखाऊंगा तो लोग कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो जो भगवान ने थ्योरेटिकली बताया वही, इसी तरह श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान भगवान ने भगवद्गीता में दिया वो यहां पे उसी को प्रैक्टिकल, जैसे कहते ना एक रूल बुक बना दी गवर्नमेंट ने, 420 ये दफा है, रेड लाइट क्रॉस कर ली तो ये होगा, फिर जो बहुत सारे उसके केसेस हैं उनको स्टडी करके बताते हैं। जब एक जज होता है तो वो देखता है इस केस का यहां पे ये हुआ था तो इसको क्या रिजल्ट देना चाहिए, वो हमें भागवतम में दिखता है। तो यहां पे एक महाभागवत को हम देख रहे हैं और आप देखें ऐसे असंख्य एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आते हैं। जैसे कुछ एक बड़ी अचंभित कर देने वाली बात यह है, एक जड़ हमारे जड़ भरत के बारे में भी आता है, उनकी कथा आती है। जड़ भरत को भी जड़वत कहा गया था शुरू से ही बचपन से, कि वो बिल्कुल जैसे डम कहते हैं ना, कि जैसे आलसी या गूंगे बहरे। तो आप देखें जितने भी महाभागवत आए हैं उनके भौतिक तौर से लोग उन्हें जड़वत समझते हैं। कितनी एक अचंभित करने वाली बात है कि हमारे जो जड़ भरत थे उनको भी सब यही समझते थे कि ये बिल्कुल जड़वत है। लेकिन क्या वो जड़वत थे? वो पूरी तरह से सक्रिय थे। बाहरी तौर से लोगों देख के समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल जड़वत है, लेकिन असली में वो 100% 100% भगवान की भक्ति में लीन थे और पूरी तरह से अग्रसर थे। सिमिलर एग्जाम्पल आता है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी चलते हुए जब आ रहे थे जहां पे भागवतम बोली गई, तो वहां पे उससे पहले उसका व्याख्या जो आता है वहां पे उन्हें कहते हैं वो बिल्कुल बिना किसी सुध-बुध के जड़वत की तरह चल रहे थे। आप देखिए महाभागवत सारे ऐसे एक भक्त जिनको भगवान कृष्ण ने जन्म से पहले दर्शन दे दिया, वो बाहर आके जड़वत की तरह चल रहे हैं। तो सारे भक्त प्रहलाद महाराज इन सबके लिए क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो जबकि 100% भगवान की भक्ति में जुड़े हैं। दिख नहीं रहा तुम, थोड़ा ऐसे करें, अच्छा वो बैलेंस बिगड़ जाएगा फिर। अब प्रभुपाद जी एक भागवतम के परपट में तीन चीजें बताते हैं, बहुत जरूरी तीन चीजें बताते हैं, कि ऊपरी तौर से कार्यकलाप सेम दिखता है, एक भौतिकवादी और एक आध्यात्मिकवादी का कार्यकलाप बिल्कुल सेम है, तीन तरह की प्रवृत्तियों से पूरी तरह से वो सुषुप्त हैं, लेकिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उनका जो चरम लक्ष्य है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या तीन चीजें बताते हैं उनको देखते हैं। तो कहते हैं उनकी गतिविधियां, उनकी गतिविधियां क्या एक्टिविटीज करते हैं, दूसरा है उनका अवशोषण, उनकी एब्जॉर्प्शन क्या है उनके दिमाग में, तीसरा कहते हैं उनकी मुस्तैदी या अलर्टनेस। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको, जैसे कंडीशन सोल है वो हमेशा पूरी तरह से एक्टिव है, राइट, सुबह सुबह सब उठते हैं भागते हैं, दिल्ली में मैं पला बड़ा हूं तो मुझे पता है सुबह सुबह नोएडा वाले गुड़गांव भाग रहे हैं, गुड़गांव वाले नोएडा भाग रहे हैं, दिल्ली वाले कई बार गाड़ी नहीं होती तो मेट्रो में हाथ ऊपर करके ऐसे पकड़ के मेट्रो भाग रहे हैं, ये सब तप है एक तरह से, है ना। तो पूरी तरह से एक्टिविटी तप कर रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं तप नहीं कर रहे भाई, पैसा कमाने में बहुत तप है। लेकिन ऋषभदेव क्या बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धम, देखो तप तो सारे कर रहे हैं, एक्टिविटी में फर्क क्या है, वो भी बेचारा हाथ ऊपर के, हम भी सुबह हाथ करके ऊपर करके बोल रहे हैं, फर्क बहुत बड़ा फर्क है ना, रिजल्ट में भी बहुत बड़ा फर्क है। वो बेचारा पूरा दिन 2 घंटे ऐसे एक हाथ पकड़ के जाता है ऊपर हाथ करके, कई बार दोनों हाथ पकड़ के, वो कहते हैं बॉम्बे में तो आप बस ट्रेन में जो गेट है उसके सामने खड़े हो जाओ, वो धक्का भी अंदर मार देंगे और फिर वापस फिर से गेट के सामने खड़े हो तो बाहर भी वापस निकाल देंगे। तो बहुत परिश्रम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि और उनका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल अलग है। हम सुबह सुबह क्यों उठते हैं, राधा श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उनकी उनसे कहते ना उनकी आंख कभी हमारे पे पड़े, उनकी नजर हमारे पे पड़े तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी तरह से अवशोषण जो उनकी एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल अलग है। कहते एक जो कंडीशन सोल या एक आत्मा जो है जड़ जो फंसी हुई है शरीर में, वो मैं कौन है ये भी नहीं जानते। जब हमारी क्लास होती है कई बार नए लोगों से एकदम मिलना होता है तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर मान लीजिए ये मेरी करताल है तो मैं कहता हूं ये मेरी करताल है ना, मतलब क्या है कि ये मेरी करताल है लेकिन मैं करताल नहीं हूं, मैं करताल तो कोई नहीं बोलता ना, सिमिलरली मैं बोलता हूँ ये मेरा लैपटॉप है, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है कि ये मेरा है, ये मेरा है लेकिन मैं लैपटॉप नहीं हूं। अच्छा, इसी तरह से हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है। अगर हम इतनी बात को भी सोच लें किसी नए लोग से मिले कि भाई तुम बोलते हो ये मेरा शरीर है, इसका मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा, आप अगर शरीर नहीं हो तो भाई उस शरीर जो असली मैं है उसके लिए क्या कर रहे हो पूरा दिन, इतना प्रश्न भी अगर आप उनके दिमाग में डाल दें तो उनकी जो अवशोषण कहते ना एब्जॉर्प्शन, एटलीस्ट दिमाग में एक कहते ना सुई चुभने लगेगी कि अरे बात जो बोली थी ना कुछ तो बोला था। और बहुत सिंपल इंग्लिश कह रहे हैं, कहते आई एम दिस बॉडी, दिस इज माय बॉडी, सो ये मेरी शरीर है, तो मतलब मैं तो शरीर नहीं हूं। जैसे कि मैं ये घर नहीं हूं, मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, या तो बोलो, कोई बोलता है कि मैं शरीर तो कोई नहीं बोलता, ये मेरा घर बोलते हैं ना, मेरा का मतलब क्या है कि ये मेरा है। तो लोग जनरली ये भी नहीं जानते कि वो है कौन, इसलिए उनका जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो क्या है, पूरी तरह से, जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं सूत मीत रमरीड़ चिंता, पूरा दिन सूत बच्चे, मीत मेरे दोस्त बंधु, रमरीर चिंता और उसके आसपास की जुड़ी हुई चीजों में पूरा दिन बस इसी में जीवन पूरा बिता देते हैं, एब्जॉर्प्शन वही है। अच्छा देखिए भक्त, अब इस तरह से महाभागवत जो है वो भी पूरी तरह से भगवान के हर समय दर्शन कर रहे हैं। जैसे बोला प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोच लेना, उनकी आंखों में भगवान के प्रेम का अंजन लग गया है। काजल लगाते थे ना माता जी, ऐसे काजल लगाती हैं या छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं उसकी नजर तेज होगी, तो एक ऐसा महाभागवत जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लग गया है उसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है, वो हर समय क्या होता है भगवान की भक्ति। नहीं तो लोग कहते हैं, एक स्टडी हुई थी, मैं पढ़ रहा था रिसर्च पेपर, उसमें कहते हैं जो एक मेन सिटीज में रहने वाले लोग हैं ना उनमें 2% से भी कम लोग असलियत में जानते हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या है या उनके जीवन में कोई पक्का लक्ष्य है, मैक्सिमम 2%, उससे नीचे नीचे ही रहता है। कई सिटियों में, इंडिया में, बाहर देशों में, सब जगह उन्होंने ये रिसर्च करी है, फिर ये कंक्लूड किया है कि 2% से कम लोग असली में ये जानते हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर सुबह उठ के रोज भाग रहे हैं। तो ये क्यों आते हैं हमें ये एग्जाम्पल, ताकि हम अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली देख पाए कि ये पॉसिबल है। हम कभी इस रास्ते पे, एटलीस्ट कहते हैं ना अगर लक्ष्य ही ना हो तो कोई क्या करे, जी कहां जा रहे हो, चल रहा हूं, नहीं कहीं तो जा रहे हो, नहीं बस चल रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, इंसान ठीक है ये? उस तरह से लेके देखिए आप, 90% लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिससे भी मिले कुछ छोटा सा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा हमें भागवत बनना, अदरवाइज तो मैं यहां बैठा नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक वो छोटी सी लड़की थी प्रभुपाद जी की, तो वो बहुत बड़ा क्या नाम प्रभु यार, सरस्वती, तो वो बहुत बड़ी प्रभुपाद जी से एक कहते ना ब्राह्मण से बहुत डिस्कशन चली, भगवान कौन है, भगवान कौन है, वो बार बार निर्विशेषवादी कहते थे। तो वो सरस्वती को बुलाते हैं, कहते सरस्वती इधर आओ, हु इज कृष्णा, तो कहते कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, करे इसको परफेक्ट नॉलेज है, तुमने जो इतनी बातें बोली तुमसे ज्यादा ये समझी है। क्यों, भगवान बोलते हैं कि सारे वेदों को जानने का पर्पस क्या है, टू नो मी, मेरे को जानना, तो जितना हमें पता है उतना ही बताएं। थर्ड है अलर्टनेस, जड़ भरत और प्रहलाद महाराज और सारे भागवत इतने अलर्ट है कि 24 घंटे भगवान का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन बाहरी तौर से कोई देखे तो पहचानेगा भी नहीं। कहते एक जो प्योर भक्त होता है ना वो नमक की तरह होता है, नमक की तरह का क्या मतलब है, कहते सब्जी में अगर नमक ठीक हो तो कोई किसी को कोई पता लगता है नमक डाला हुआ है इसमें, अच्छा कभी नमक ना हो तो पूरी सब्जी खराब हो गई ना। तो एक जो महाभागवत एक प्योर डिवोटी है वो उस नमक की तरह काम करता है, सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब ही यही है कि वो वहां पे उपस्थित है, उसने अपनी सेवा कर दी है। लेकिन अगर वो ना होना सब देखते हैं, अरे आज कहां गए। जैसे मैं जब आ रहा था क्लास के लिए मैंने सोचा कि पता नहीं लैपटॉप मेरा फिक्स होगा नहीं होगा, कौन लेट आएगा नहीं आएगा, लेकिन प्रभु जी बिल्कुल आधा घंटे पहले आके खड़े हो गए, अब देखो है ही नहीं। उन्होंने काम अपनी सेवा करी, कथा सुन रहे पीछे बैठ के, कोई उन्हें मतलब नहीं है, उनकी सेवा हो गई। तो वो नमक की तरह काम करता है, हम सबको उस नमक की तरह बनना है। शुरू कैसे होंगे राइट, तो वो नमक का भाव अपने में लाना है। जब हम उस सेवा को इस तरह से करें कि सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी का शनि राहु केतु भारी हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल हमारे मंदिर के बाहर ज्योतिष जी एक बैठते हैं और कई लोग उनको हाथ दिखा रहे होते हैं, अरे प्रभु जी आपकी साढ़े शक्ति चल रही है, अरे आपका मंगल चल रहा है, कुछ भी मंगल नहीं होगा आपके जीवन में अगले 5 साल के लिए। बंदा कहता है प्रभु जी कोई तो उपाय बताओ। कहते कृष्ण भावना भावित भावना मृत में अगर कोई आ गया तो कृष्ण उस ग्रह की तरह उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से। कहते ना अगर बच्चों को आप बचपन में भक्ति दो तो फिर कृष्ण उन्हें नहीं छोड़ते, वो कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर जाए, जैसे हम भी कई बार भटकते हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार जो कृष्ण से जुड़ गया वो चाहेगा भी बाहर जाने का, उसे समझ नहीं आएगा क्या करना है। मतलब बिल्कुल ऐसे लगेगा जब हम बहुत पहले जुड़े थे कृष्ण भावनामृत से, तो एक बार हम इंडिया आए तो हम तब इटालियन बहुत खाते थे, और इटालियन तो खाने में सिर्फ अनियन गार्लिक मेन चीज यूज होती है। तो हमने कहा चलो भाई रेस्टोरेंट चलते हैं, बिल्कुल नए नए जुड़े थे हम, दिल्ली में आए वापस, हमने कहा चलो देखें उन्हें बिना प्याज लहसुन का बनाने के लिए बोलेंगे। लेकिन जब हम जाके रेस्टोरेंट में खड़े हुए, ऐसी वहां पे खुशबू, एक खुशबू, अब प्यार से बोल रहा हूँ, बट ऐसी एक महक थी कि हम वहां पे खड़े ही नहीं हो पाए। तो ये कृष्ण की कृपा है, अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान हर तरह से हमें प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि अगर राहु केतु शनि इतना प्रभाव डाल सकते हैं, तो वो सर्वव्यापी भगवान हमारे जीवन में क्या किस तरह का चेंज कर सकते हैं वो देखिए। जैसे चैतन्य चरितमृत में एक और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की कथा आती है, बहुत ही अमीर खानदान के पुत्र थे वो, और हर समय महाप्रभु से मिलने के लिए घर छोड़ के भाग जाते थे, वो बार बार उन्हें खींच के लाते थे फिर भाग जाते थे। फिर उनके पिता उन्हें पैसे देते थे, अच्छा तुम 3-4 महीने रहो, बहुत सारे नौकर चाकर उनके साथ भेजते थे कि तुम वहां रहो लेकिन हमारी नजर में रहो। फिर उन्होंने कहा जब भी कुछ करो ये मानता नहीं है तो क्या करे, उनकी शादी करवा दी, बहुत ही सुंदर एक बिल्कुल लक्ष्मी जी से का स्वरूप शादी करवा दी, इतना धन दिया उन्हें फिर भी वो फंसे नहीं। तो वो क्या बोलते हैं वहां पे एक वक्त चैतन्य ग्रह ग्रहित आत्मा, तो उनके पिता एक बार मां बोलती है रस्सी से बांध के रख दो, जाने ही मत दो, बस खाना खिलाओ। तो कहते हैं देखो इस पे चैतन्य महाप्रभु का ग्रहण लग गया है, ऐसा ग्रहण लग गया है कि अब जब एक अप्सरा जैसी बीवी इसे नहीं रोक पा रही, इतना इंद्र जैसी लक्ष्मियां इसे नहीं रोक पा रही, तो तुम और मैं क्या रोकेंगे। इसने अपने जीवन को असली लक्ष्य अपना समझ लिया, तो इसे जाने दो। इसी तरह से हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम देखेंगे हमारा जीवन बदल रहा है। एक और बात करते हैं, अभी आएगा कैसे, भगवत गीता में जैसे मैं बोला भगवत गीता में प्रिंसिपल्स हैं, यहां पे कथाएं हैं, वहां पे हमारे क्या बोलते हैं उसे सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत है, यही क्वेश्चन अर्जुन भगवत गीता में कृष्ण भगवान से पूछता है कि हे भगवान स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचाने, और तू दो दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से 70-72 श्लोक तक भगवान ने स्थित प्रज्ञ या महा जो यहां पे प्रहलाद महाराज की बात करें उनकी पूरा व्याख्यान किया है। वहां पे क्या बोलता है अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञ का भाषा, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे चलता है, आप मुझे बताओ। देखो नहीं तो इतने लोग घूम रहे हैं कभी पहचानना ही मुश्किल है। कोई कहता है अगर भगवान हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, कोई बड़ा भक्त हमारे सामने आ जाए, हमारे तो एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकता हूं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी धकी हुई हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। तो यहां पे अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, एक स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचानूं, उनको कैसी उनकी चेतना क्या है। कृष्ण भावना मृत जो हम बोलते हैं, कृष्ण चेतना, नहीं तो कोई हो सकता है हिमालय में बैठा हो, सब कुछ छोड़ के हिमालय चला गया, लेकिन वहां बैठ के दिल्ली में जो एक समोसे खाए थे, शर्मा जी के छोले भटूरे खाए थे, वो दिमाग में चल रहे हो, तो क्या वो सिद्ध प्रज्ञ है। देखो सब कुछ छोड़ दिया उसने, हिमालय में जाके बैठा है लेकिन वहां बैठ के भी शर्मा जी के छोले भटूरे याद आ रहे हैं। और एक भक्त शिल प्रभुपाद जैसा बिल्कुल माया के बीच में जाके बैठ गया। हमारे गुरु आचार्य वृंद इतने ब्रह्मचारी, इतने ट्रैवलिंग डिवोटी कहां कहां जगह जा रहे हैं जहां पे कोई जाने की हिम्मत भी ना करे, ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके भी वो पूर्णतया कृष्णा भावना में रहते हैं। कैसे? इसलिए अर्जुन पूछ रहा है स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, तो ये चेतना की बात है। शरीर तो हमें लेके आना है, रोज खींचना है, लेकिन चेतना पे ध्यान ज्यादा देना है। नहीं तो कोई बोलता है, अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं, अरे भक्त बनना बड़ा आसान है, 500 रुपए में भक्त। अरे 500 रुपए में? अरे हाँ, 250 की धोती, 150 का कुर्ता, 20 का तिलक, एक कंठी और एक ये, 500 रुपए में भक्त यार, है कि नहीं? लेकिन जो भक्ति मार्ग पे चल पड़े उनसे पूछो, पूरी जिंदगी बीत जाती है। और जितना हम आगे अग्रसर होते हैं हमें लगता है अरे क्या जीवन खराब कर दिया अभी तक, कैसे तीव्रता लाएं ये मन में। लेकिन बाहरी रूप से देखो तो कितना आसान लगता है। तभी प्रभुपाद कहते थे भक्ति बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है। जब तक जैसे कहते हैं चैतन्य चरित में कहते हैं, अगर आप चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करो तो बहुत मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती हैं, और चैतन्य महाप्रभु की विस्मृति बहुत आसान आसान काम भी बहुत ही कर्षति जैसे बोलते हैं ना उससे होंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो थ्योरी है, बहुत अच्छी बात है। जब कुछ जीवन में बुरा होता है, अच्छा कैसे क्वालिटीज लाएं उसकी बात हो रही है, तो यहां पे भागवतम में एक श्लोक आता है, कहते यस्याति भक्ति भगवती अचिंचना सर्वेर गुणा तथा तत्र समस्त सुराः, कि अगर आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, ऊपर से ऐसा नहीं है कि मुझे हम्बल बनना पड़ेगा कि भाई रोज सुबह, जैसे तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे रोज सुबह उठ के अपने दिमाग पे 2 चप्पल मारो, फिर सोने से पहले 4 चप्पल और मारो। अब ऐसा नहीं हम रात को शुरू कर दें, लेकिन अपने दिमाग को ये बताना जरूरी है कि हे मन तूने पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ कर दिया। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, अगर कोई भक्ति योग में जुड़ जाए तो धीरे धीरे उसमें सारे देवी गुण अपने आप प्रकट होते हैं। फिर आगे बोलते हैं हरेव आसक्त कुतो महान गुना, और अगर कोई भौतिक रूप से कोई बहुत महान व्यक्ति भी है तो उसमें क्या गुण है। अब ऐसे कोई बोले प्रभु ऐसे क्यों बोल रहे, इतना दान दक्षिणा कर रहे हैं प्रभु, इतना कर्म कांड कर रहे हैं, इतना लोगों का भला करते हैं। अरे असलियत क्या है कि उनका हर कदम, वो पुराने जमाने में कैसेट होती थी ना, इधर से खाली तो इधर भर गई, इधर से खाली तो इधर भर गई, उनका जीवन ऐसे ही चल रहा है, इधर से कर्म कर रहे हैं उधर से भर रहा है, क्योंकि अच्छा कर्म भी हमें वापस यहीं लाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं हरेव अभक्तस्य कुतो महान गुणा, कि अगर कोई हरि का भक्त नहीं है तो उसमें क्या महान गुण है, क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से तो वो कभी छूट ही नहीं पाएगा। तो दूसरे अध्याय के ये श्लोक हमें जरूर पढ़ने चाहिए। अगर प्रहलाद महाराज के चरित्र को हमें समझना है तो दूसरे अध्याय के ये श्लोक, ऑफकोर्स हम हर श्लोक में नहीं जा सकते, हर श्लोक अपने अपने एक पूरी क्लास लेता है, लेकिन क्रक्स मैं निकाल के कोशिश कर रहा हूं आपको देने की। उसमें क्या कहते हैं, पहली जो एक योग्यता है भक्त की वो क्या है, कहते हैं श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामान सर्वमार्थ मनोगता आत्मन्याव एव आत्मतुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोचेते। क्या बोल रहे हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगता, जो मन से उत्पत्त होने वाली चीजें है ना, जो मन हमेशा भागता है, मन बहुत चंचल है। अर्जुन जब बोल रहा है हे भगवान मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल करना मेरे बस की नहीं, तो हम कहते ना हम किस खेत की मूली हैं। तो हमारा जब अर्जुन जो भगवान का सखा था वो साथ में बैठ के ये बोल रहा है, और हम कई बार अपनी मेडिटेशन या ऐसे प्रोसेस बहुत लोग करते हैं, जब अर्जुन नहीं कर पा रहा, भगवान का सखा भगवान के सामने बैठा हुआ, तो हम अपने प्रोसेस से क्या करेंगे। तो यहां पर क्या बोलते हैं, पहली क्वालिटी क्या है कि जो मन मनो की गति से जो इच्छाएं बार बार आती है उनको त्याग कर देता है। मतलब क्या करता है, तो खाता नहीं है पीता नहीं है, बिल्कुल खाता पीता है, पूरी तरह से संलग्न रहता है, भगवान का प्रसाद मिलता है तो पूरी अच्छी भरपूर, प्रभु जी एक और रसमलाई, प्रभु गुलाब जामुन दो और प्लीज, पूरी अच्छे से अपना भर पेट खाता है। लेकिन जब मार्केट में जाता है वहां बहुत बढ़िया चाट पापड़ी गोलगप्पे दिखते हैं, तो वो क्या करता है अपनी इंद्रियों को, जैसे कछुए का एग्जाम्पल भगवान ने दिया, पूरी तरह से बंद कर देता है। तो यहां पे ही भगवान क्या एग्जाम्पल देते हैं कि उस कछुए की तरह पहले बोलते हैं काम करो, जैसे ही कोई ऐसी चीज दिखे जो कि इंद्रियों को विचलित कर सकते हैं, तो उस कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर खींचो। पहली शिक्षा भगवान बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं? आत्मन्य एव आत्मतुष्टा। हर समय वो अपनी अपने अंतर ध्यान में ही संतुष्ट रहता है। जो सिचुएशन भगवान दे दी उसको उसमें संतुष्ट है हर समय। जैसे अगर कोई बड़े शॉप पे कुछ परफ्यूम खरीदने या आप कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो वो छोटे छोटे सैंपल देते हैं। अगर माता जी लिपस्टिक लेने जाएं तो उसके साथ छोटा सा सैंपल देते हैं, ये लोग ये भी ट्राई करना, छोटा परफ्यूम है, छोटी लिपस्टिक है, कुछ क्रीम दे देते हैं। क्यों देते हैं? हमने उसके लिए पैसे तो नहीं दिए, हम तो मेन चीज खरीदने आए थे, बट साथ में क्यों मिल गए? जब भक्त को कोई अच्छा मिले तो वो इस तरह से सोचते हैं कि मैं इसके लायक तो नहीं हूं, बट क्योंकि मैं भक्ति में लगा हूं तो भगवान मुझे फ्री सैंपल दे रहे हैं। देखो मेरे जीवन में इतनी अच्छी चीजें चल रही, क्यों? भगवान उस फ्री सैंपल, मैं डिजर्विंग नहीं हूं। इसी तरह से जब कुछ बुरा आए तो वो क्या सोचता है कि अरे मेरा तो असली में इससे बहुत बुरा होना चाहिए, मेरे अंदर के कलमश तो सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में लगाऊं तो सब कुछ भगवान कम कर रहे हैं। तो यहां पे कहते हैं आत्मन्य एव आत्मतुष्टः। पहली सीख भगवान दे रहे हैं। तो क्या वो काम नहीं करता? चार तरह के प्रश्न। क्या वो काम नहीं करता? नहीं नहीं काम करता है जी, लेकिन उस काम में सुबह सुबह, पहले कहते ना नौकरी पे जाना है, सबको जाना है। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? माम अनुस्वर युद्ध च। क्या बोला? मेरा ध्यान करो और फिर युद्ध करो। अगर हम सुबह अपनी नौकरी पे बिना माला करे निकल गए तो मां मनुष्वर तो हुआ ही नहीं, तो युद्ध क्या कैसे करेंगे, इस भौतिक शक्ति से कैसे लड़ेंगे? तो यहां पे क्या बता, काम सारे कर रहे हैं। अच्छा, मन की चीजें की इच्छा, मन चीजों की इच्छाएं क्यों करता है? क्या लगता है? क्योंकि उसे लगता है इसी में खुशी है। फिर अगला प्रश्न आता है, उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? सारी इच्छाओं की उत्पत्ति कहां से होती है? क्या लगता है? हाँ जी, मन से। मन के तीन काम है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। पहले उसके बारे में सोचता है, जैसे ही सोचा मन में भाव आ गया, अरे क्या मजा आएगा, चाहे वो अच्छा है या नहीं है। और फिर क्योंकि उसको अंदर जाने दिया तो उस तरह की इच्छाएं प्रकट होने लगती है। तो भक्त क्या करते हैं, हमें इस स्टेज पे क्या करना है, थिंकिंग की स्टेज पे ही उसे काट देना है। मां भागवत की स्टेज पे पहुंचने की बात चल रही है, लेकिन हम उससे, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकता हूं, बहुत दूर हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बहुत अच्छे फॉर्मूले दे रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको व्याख्यान करते हैं। ये सारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मैंने पॉइंट्स लिए हैं। अच्छा, ये ऐसे भक्त और कौन देखे हमने? कोलवेच्चा श्रीधर, बिल्कुल एक भौतिक स्थिति से बिल्कुल ही अकिंचन, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोज उनके पास जाते थे, उनसे गंगा जी के वो जो बनाना लीफ कप वो बेचते थे उससे खरीदते थे और उनसे बहुत बात करते थे। अरे तुम बहुत महंगा बेचते हो, तो कहता था अरे आप ऐसे ही ले जाओ, अरे मैं नहीं, मैं पैसे दूंगा लेकिन आधे पैसे दूंगा। रोज चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते थे। जब महाप्रकाश लीला हुई तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर को लेके आओ। और वो ऐसा भक्त था, किसी को पता ही नहीं था कोलवेच्चा श्रीधर है कौन। सोचो, ऐसा भक्त जिसको चैतन्य महाप्रभु खुद रोज मिलने जानते, कोई जानता ही नहीं है उसे, लेकिन भगवान ने उसे बुलाया और बोला तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम इतनी तकलीफ में जी रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? धन चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा, आज मुझसे मांगो। तो वो कहता है मैं कणिक नहीं हूं, आपको अगर कुछ देना है ना तो मुझे सिर्फ ये दो, जिस भी जन्म में मैं जाऊं आप खुद मुझसे वो रोज बनाना कप खरीदने आओ, रोज अगर कुछ देना ही है तो ये दो। ये है एक भगवत भक्त की इच्छा। आप ये देखिए, ध्रुव महाराज, इच्छा क्या थी? भगवान अपने पिता से बड़ा राज पाने की, लेकिन भगवान की भक्ति में जुड़े। अंत में जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान ने उनको अपना शंख टच किया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, अब मुझे आपके जैसा हीरा मिल गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं अकाम वा सर्व काम वा, चाहे तुम अकाम हो, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, या सर्व काम वा, पूरी इच्छाओं से भरे हो। अकाम वा सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी, चाहे आप मोक्ष के पीछे भाग रहे हो। क्या करना चाहिए सबको? तीव्रेण भक्ति योगेना यजते पुरुष परम,
उस भगवान कृष्ण की भक्ति में चाहे किसी भी स्टेज पे हम आज जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो भगवान बताते हैं कि हमें कूर्म की तरह शुरू करना है, टॉर्टोइस की तरह, कछुए की तरह शुरू करना है। लेकिन कछुए की तो चलो बाहर से वो अंदर कर गया, एक बार हाथी भी ऊपर पांव रखे तो कुछ नहीं होता उसे, अगर इंद्रिया अंदर चली गई तो। लेकिन हमारी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, हमारे अंदर ही कलमश बैठे, तुम्हारे किले में ऑलरेडी दुश्मन घुस चुके हैं। तो इसलिए भगवान आगे बताते हैं कि पांच तरह की चीजें हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, वीक पॉइंट्स। जब होते ना आप फुटबॉल मैच खेलो या बॉलिंग जब करते हैं तो उन्हें पता है सामने वाला अगर शॉर्ट बॉल नहीं पकड़ सकता तो फिर वो शॉर्ट बॉल ही कराता जाता है। क्यों? बॉक्सिंग मैच में अगर आप देखें वो कैसे करते हैं, जो बॉक्सर होता है ना वो बीच बीच में कहीं कहीं मुक्के मारता रहता है बिना देखे पीछे, सोचे बिना, तो वो देखता है उसकी शक्ल की कहां पे उसे दर्द हुआ। एक बार उसे दर्द पता लग गया कहां पे हो रहा है, फिर सारे घूसे वहीं मारता है। तो माया हमसे यही करती है, हमारे बहुत सारे वीक पॉइंट है और माया वहीं पे बार 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 प्रहार करेगी। और ये आती कहां से है? ये पांच हमारे द्वार है, कान, नाक, आंख, त्वचा, इनसे माया अंदर घुसती है। क्योंकि हम जब कुछ छुएंगे कुछ देखेंगे तभी तो इच्छा आएगी ना मन में। तो पहले भगवान बोलते हैं इसे कंट्रोल में लाओ। आगे क्या बोलते हैं भगवान? अब भक्त कैसे अपने आप को बचाता है? जैसे मैंने बोला भाई खाना सबने है, लेकिन भक्त बोलता है मैं वही खाऊंगा जो भगवान को भोग लगा है। अपने आप इंद्रिय कंट्रोल में आ गई। कहते हैं ना हम रोज महाप्रसाद है गोविंदे स्वल्प नमो ब्राह्मणी वैष्णव स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वास शरीरा विद्या जल जड़ेन्द्रिय ताहे काल। उसमें जो इंद्रिय है सब जड़ इंद्रिय है, उनमें जीव जो है वो सबसे प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम अपने जीवन में दो चीजें फिक्स कर दे जीव से, प्रभुपाद जी बोलते हैं सेवन मुखे जीवादो, भगवान की भक्ति शुरू होती जीव से। तो खाना अपना कंट्रोल कर ले, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम धीरे धीरे देखेंगे हमारे जीवन में एक ऐसी स्टेज आएगी जैसे वो कहते हैं ना हनुमान जी कहे हम हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। असली में जीवन में विपत्ति क्या है खुद बताते हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, उसमें बताते हैं कह हनुमंत विपत्त प्रभु सोई जब तब सिमरन भजन ना होई। जीवन में असली विपत्ति अगर हमारे जीवन में है कोई तो यही है। अगर हम इतनी बात समझ लें तो अपने आप जीवन बदलने लगेगा। तो एक एक करके भगवान पूरा वो बताते हैं आगे कि कैसे हमें वीक पॉइंट को बचाना है। दो तरह की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम में क्या दो प्रॉब्लम बताइए? एक तो भौतिक, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हम ऊपर से कंट्रोल करें लेकिन अंदर इच्छाएं तो खत्म नहीं हुई ना। तो क्या बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना। भाई हमने ऊपर से तो कूर्म की तरह अपनी इंद्रियां खींच ली लेकिन अंदर इच्छाएं तो बैठी है ना भाई, तो धीरे धीरे निहारस्य भूख, निहार जैसे बोलते हैं ना कि आहार नहीं मिल रहा, तो निहारस्य देही नाम, तो इंद्रिय अंदर से बड़ी परेशान करती है। तो कहते हैं रसो वर्जम रसोपस्य, अगर उसे फिर से उस आग में तेल नहीं डालोगे ना तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, धीरे धीरे ऊपर जाना। तो बड़ा सिंपल सा बताया, दो तरह की इच्छाएं हैं, एक तो भौतिक इच्छाएं हैं, जैसे मान लो कोई ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहा है, अब ऐसा तो नहीं अब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करेगा बेचारा। एक प्रभु जी हमारे गए कतर में प्रोजेक्ट पे गए, वहां पे एक दिन का प्रोजेक्ट था, तीन दिन खिंच गया, अब बेचारा सैलेड तो खाएगा क्या करे, मतलब कुछ तो खाए, बिल्कुल तीन दिन भूखा रखना तो बहुत मुश्किल है। तो एक तो हो गई जैविक इच्छाएं, भूख प्यास ये सब, इनको तो हम किस तरह से कंट्रोल कर, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, जो हमारी कामिक इच्छाएं हैं उनको रोकना। देखो अगर कोई बीमार है और उसे बोले देखो, वो बोलते तुम्हें शुगर बड़ी हाई है आम मत खाना इस सीजन में, अब ऐसा तो नहीं है वो आम नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो एटलीस्ट जो हमारी मानसिक इच्छाएं हैं उनको रोकना चाहिए सबसे पहले, अगर वो गलत तरह से ले जा रही है हमें तो मानसिक इच्छाओं को रोकेंगे। प्रभुपाद जी ऐसे महाभागवतों का एग्जाम्पल हम खुद देख सकते हैं जीवन में। तो वहां पे भगवान क्या बताते हैं 2.70 में, ये बताते हैं कि आज कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है हम उसमें फंस क्यों जाते हैं, जो हमारी मानसिकता है ना वो कैसी है, आज एक गड्ढे की तरह है। अच्छा नदी अगर बह रही है किसी गड्ढे में जाए तो पूरा गड्ढा बह जाता है ना साथ में, पूरा भर जाता है। हमारी मानसिकता आज की डेट में इसी तरह से है। तो 2.70 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि अपनी मानसिकता को गड्ढे की जगह एक समुद्र जैसी बनाओ। क्या करना है? भक्ति योग में लग के जो हमारी मानसिकता छोटी छोटी चीजों से बिखर जाती है ना, वो जब समुद्र जैसी बन जाएगी तो कितनी भी नदियां, इच्छा की कितनी भी नदियां उसमें आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान खुद बता रहे हैं भगवद्गीता में, देखिए कभी कहते हैं अहितु की भक्ति, किसी भक्त ने कृपा कर दी, फिर प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया हमें, सिर्फ पढ़ना है और जीवन बदल सकता है। तो महाभागवत प्रहलाद महाराज, जड़ भरत, प्रभुपाद जी, हमारे करंत भक्तवृंद, अपना महाप्रभु को देखिए, अपना श्रील प्रभुपाद को देखिए, कैसे वो एक ऐसी सिचुएशन में थे 70 साल की उम्र में, वृंदावन छोड़ के जाने के लिए किसी को कोई रीजन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से कृष्ण भावना मृत में खोए हुए थे, लेकिन बाकियों का उद्धार करने के लिए वो यहां से निकले। अच्छा कहां गए? ऐसी जगह पे जहां पे कोई पांव रख के भी तैयार ना हो, वहां जाके बोलते हैं नचाओ 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 प्रभु, कि हे प्रभु तुम मुझे यहां ले जाए तो अपनी कठपुतली की तरह मुझे जितना नचाना नचाओ। 70 साल का आदमी एक सबके लिए प्रसाद बनाता था, सब चले जाते थे, फिर जब वो चले जाते थे तो सबके बर्तन धोते थे वो रोज। एक दिन एक भक्त बैठ गया देर तक, तो उसने देखा अरे हम तो रोज बिना बोले चले जाते हैं और ये प्रभुपाद जी बाद में सबके बर्तन धोते हैं। तो उसने कहा प्रभुपाद मैं कुछ मदद करूं? तो प्रभुपाद ने कहा देखो भगवान मुझे कोई सेवा भेज रहे, बट ऐसा नहीं था कि उससे पहले प्रभुपाद जी जोर से उठते थे कि ये वही लोग फिर से आ गए आज खाना खा के जाएंगे, ये भाव था उनका। तो कितनी भी गलत सिचुएशन उनके सामने आई, वो प्रहलाद महाराज की तरह हमेशा स्थित प्रज्ञ थे। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी का एक वो बताते हैं, कहते हैं कि रशिया में एक बार किसी सिटी से दूसरी सिटी में उन्हें जाना था और वहां पे उन्होंने स्पेशली बुलाया, महाराज का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज आप यहां से होते हुए गुजरो। तो महाराज गए, अच्छा जैसे ही महाराज ने लैंड किया वहां पे इतना बड़ा साइक्लोन, पूरा बादल सब कुछ घिर गया। तो उन्होंने कहा महाराज सिर्फ एक दिन के लिए, इतना हमने बोला आने के लिए, अब आ गए हैं तो अब मौसम इतना खराब है कि कहीं जा ही नहीं सकते, तो सब गाड़ी में बैठे हैं, अब बोले कैसे, जबरदस्ती बुलाया है, आ ही नहीं रहते वो। तो वो महाराज वहां बैठे, तो एक ने बोला महाराज आज गुरु महाराज कितने बादल है ना, तो कहते हाँ इसमें कृष्ण को देखो और कृष्ण की इच्छा देखो, तुम्हें वो विराट रूप नहीं दिख रहा उसमें? तो वो कहता अरे मैं क्या छोटी बात सोच रहा था, और महाराज की विजन जो देखो कहां है। ऐसे जयपत का स्वामी महाराज, किसी भी हमारे करंट आचार्यवृंद, इवन भक्तों को देखिए, मतलब क्या जीवन उनका शारीरिक रूप से बिल्कुल ऊपर है, कैसे? क्योंकि वो इस आत्म एव आत्मतुष्ट है, अपने अंदर भगवान की पूरी भक्ति में लगे हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे 26 गुण भक्तों के बताए गए हैं जो दिखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये 26 गुण कहते हैं एक भक्त में होने चाहिए, क्या क्या? सत्य बोले, किसी दक्ष हो, मौन हो, कवि हो, कभी किसी का बुरा ना करे, कभी किसी का कुछ ना करे। इसमें एक क्वालिटी जो है, एक तटस्थ लक्षण है जो मेन लक्षण है, इस सब में एक क्वालिटी है जो सबसे जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, गिरिराज स्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे कि सब कुछ तब मिलेगा जब ये एक क्वालिटी हम अपने अंदर ले आए। कि हो सकता है भाई सत्य बोलना है हमेशा, लेकिन हो सकता है भक्त ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पे हर समय सत्य ना बोल पाए, लेकिन अगर एक क्वालिटी होगी ना तो बाकी सब अपने आप आएंगे। क्या है वो, कोई देख के बता सकता क्या है? जी किसी ने बोला कृष्ण एक शरणम। अगर हमने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं हर स्थिति में सिर्फ कृष्ण की शरण लूंगा, तो हम देखेंगे जीवन अपने आप पूरी तरह से चेंज होगा। ये है भक्त जो हमें सिखाते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? यत करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शुरू करना है आज, जो भी हम करें भाई, करते तो सब कुछ है, भगवान के लिए करो। जैसे सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कोई भी काम शुरू करो, बोलो कृष्ण प्रीति अस्तु, गुरु प्रीति अर्थे। तो काम शुरू करो ऐसे, यद करोशी यद अश्नासी, खाते समय भगवान के लिए भोग खाओ। यद जुहोशी ददासी यद, सब दान करते हैं तो भगवान के लिए कुछ ऐसे काम में दान करो जो भगवान के प्रचार में हो, भक्तों की सेवा में हो। तो ये अगर हम छोटा छोटा करते रहें तो हम धीरे धीरे देखेंगे ये सारी चीजें हमारे जीवन में फिर आएंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, कहते हैं नौ भक्ति की अंग है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। लेकिन अगर किसी का अंग कोई कट जाए फिर भी जी लेता है ना, लेकिन जब तक हृदय चलता रहे, बात सही है नहीं? अगर हृदय रुक जाए तो अंग कुछ काम करेंगे? कर सकते हैं बाकी काम। तो हमारे प्रभुपाद जी और आचार्यवृंद क्या बोलते हैं, वो जो हृदय है ना भक्ति का, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब तक हम ये करते रहेंगे ना तो भगवान की भक्ति में हम धीरे धीरे अग्रसर होते ही रहेंगे। और एक दिन प्रहलाद महाराज की हम कहते हैं ना अनुकरण तो नहीं कर सकते, अनुस्मरण करना है, उनकी शिक्षाओं पे चलना है, उनकी तरह तो हम कभी नहीं। प्रभुपाद जी दो घंटे सोते थे फिर भी काम करते थे, हमें दो दिन होना पड़े तो बेहोश होने लगते हैं, तो उनका नकल तो हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सीख लेके हमें धीरे धीरे बढ़ना है। और ये शुरू होता है बिल्कुल ध्यान पूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जब से। प्रभुपाद, मैं इससे खत्म करता हूँ। प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं, बारह महाजन के बारे में बता रहे थे, तो उनके भक्त ने बोला, प्रभुपाद आप 13th महाजन है, क्यों इन 12 महाजन के बारे में आपने हमें बताया नहीं तो हमें कहां पता लगता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम 14वें महाजन हो, क्योंकि अगर इन आचार्यों की शिक्षा तुम ले लोगे तो तुम भी महाजन हो भाई। तो हमें अपने जीवन में सिर्फ यही करना है, आचार्य वृंद गुरु वृंद भक्त जो हमें सिखा रहे हैं उस पर धीरे धीरे क्षणे क्षणे बढ़ते चलना है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, अनकोटि वैष्णव वृंद की जय।